नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से ही परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सीडॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 अमरीकी डॉलर का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 272 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 3 दिन के दौरान देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में भी हल्की बारिश जारी रहेगी। इधर राजधानी दिल्ली में आज कई स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।